ये आकाशवाणी है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है विशेष कार्यक्रम।
जितना चांद तेरा उतना ही मेरा, बादल हो या आसमां, राहें हो या कारवां, एहसास हो ना लगाव का, मिलके कहेंगे हम, हमें हक है, हक है बराबरी का, गर्व से जिएंगे हम, गर्व से जिएंगे हम, गर्व से जिएंगे हम।
नमस्कार श्रोताओं, आज इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। कल्पना कीजिए एक ऐसे बगीचे की जिसमें तरह तरह के फूल हैं। किन्हीं फूल का अपना रंग है तो किन्हीं की अपनी खुशबू है। यही बात लागू होती है मानव पर। मानव की अपनी विशेषताएं हैं और हर विशेषता का महत्व है। अक्सर हम एक इंसान की कमी को पहले आंकते हैं और उसकी विशेषता या योग्यता को दूसरे दर्जे पर रखते हैं, लेकिन वास्तव में किसी भी व्यक्ति की विशेषता या योग्यता ही उसे सक्षम बनाती है। विश्व और भारत में दिव्यांगजनों की एक बहुत बड़ी आबादी है और दिव्यांगजनों की विशेषता और योग्यता भी समाज में उतना ही योगदान रखती है जितना कि किसी भी इंसान के लिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस यही संदेश देता है कि हम सभी दिव्यांगजनों की इस काबिलियत और इस क्षमता को पहचाने, उसे स्थान दें, उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करें। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के लिए अनुकरणीय काम करने वालों को पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कार प्राप्त करने वालों में वे संस्थाएं भी थीं जिन्होंने दिव्यांगजनों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन विशेष व्यक्तियों को भी ये पुरस्कार प्रदान किए जिन्होंने दिव्यांग रहते हुए अपने जीवन में कुछ हासिल किया है। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा।
सरकार के साथ साथ समाज को भी दिव्यांगजन के हित में जागरूक और सक्रिय रहना चाहिए। इससे सरकार के प्रगतिशील प्रयासों को बल मिलेगा। समाज द्वारा दिव्यांगता से प्रभावित लोगों की गरिमा और समानता पर ध्यान देने से दिव्यांगजन अपने जीवन में अधिक प्रसन्नता और कार्य क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांगजन की गरिमा, आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव को सुनिश्चित करना हम सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है। सभी देशवासियों का ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति के प्रयासों में दिव्यांगजन को भागीदारी बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी दिव्यांगजन पीछे ना छूटे।
समाज की जागरूकता और सरकार की सक्रियता के परिणाम स्वरूप ये देखा गया है कि दिव्यांगजनों ने अपने जीवन में ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं जिससे राष्ट्र और समाज में उनके योगदान को सराहा जा रहा है। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों की भी ऐसी ही कुछ कहानियां हैं। आइए अपने श्रोताओं को उन कहानियों से परिचित करवाते हैं और हम उन प्रेरणादायी व्यक्तित्वों से मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन में चुनौतियों और संघर्ष को पार करते हुए अपने जीवन में कुछ हासिल किया।
मेरा नाम निपुण मल्होत्रा है और आज मैं नेशनल अवार्ड रोल मॉडल कैटेगरी में जीत रहा हूँ। मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है एंड दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को ये बोला था कि निपुण एक वुडन डॉल जैसे जिंदगी जिएगा, बट मैंने डॉक्टर्स को गलत प्रूफ किया। मैंने सेंट स्टीफन्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ISB से पढ़ाई की है। मैं अपनी संस्था चलाता हूँ कॉल्ड इंडिपेंडेंट फाउंडेशन, जहाँ हम डिसेबिलिटी लॉ एंड पॉलिसी पे काम करते हैं। आज के अवार्ड के बारे में मेरे बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है एंड आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्पेशली द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कि उन्होंने मुझे फेथ दिखाया और मुझे अवार्ड दिया। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज आई होप मैं अपनी जर्नी के थ्रू दूसरों को इंस्पायर कर पाऊँ और दूसरों के पेरेंट्स को भी ये दिखा पाऊँ कि अगर आपका चाइल्ड कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है उससे जिंदगी नहीं रुक जाती, बट फिर भी ये बहुत मौका है आगे बढ़ने का अगर आप हौसले से आगे बढ़ते रहें।
नाम अबोली जरित है, मैं 22 इयर्स की हूँ, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर की फर्स्ट व्हीलचेयर मॉडल, हैप्पीनेस एम्बेसडर, मोटिवेशनल स्पीकर, सिंगर, व्हीलचेयर मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट। मेरी जर्नी 8 इयर्स से शुरू है और 8 इयर्स के करियर में मैंने इतना सब कुछ हासिल किया है। 22 ईयर में मैंने 8 इयर्स के करियर में इतना सब हासिल किया है। इतने सब प्रॉब्लम के वजह से मुझे क्रोनिक किडनी डिसीज है जिसमें मेरी दोनों किडनीज डैमेज है और रेगुलर साइज से छोटी है और मुझे ब्लैडर नहीं है। और मैं सब कुछ करती हूँ एंड मैं मोटिवेट करती हूँ पेशेंट्स को एंड जितना मुझसे हो सके उतना मैं सबकी हेल्प भी करती हूँ। एंड एज अ रोल मॉडल आज मुझे अवार्ड मिल रहा है, नेशनल अवार्ड, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है एंड मेरी फैमिली को भी। एंड या थैंक यू।
माई नेम इज़ मोहम्मद यासीन। आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ओचरा इन केरला स्टेट एंड आई प्लेइंग कीबोर्ड। आई गॉट सम अवार्ड्स इन केरला स्टेट अवार्ड, 3 state awards एंड 3 national awards एंड 3 television awards एंड इंक्लूडिंग 300 awards इन माई लाइफ। वेरी प्रेशर एंड वेरी प्राउड मोमेंट्स।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग वो महत्वपूर्ण इकाई है जो वर्षों से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए नीतिगत स्तर पर और जागरूकता के स्तर पर काम कर रहा है। बीते वर्षों में ऐसी कई योजनाएं और कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से संचालित किए गए हैं जिससे दिव्यांगजनों को न सिर्फ सुविधाएं मिल रही हैं बल्कि रोजगार और कौशल विकास के जरिए उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। तो हमने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उप महानिदेशक से एक विशेष बातचीत की और उनसे ये जानने का प्रयास किया कि किस तरह से दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और विभिन्न कदमों से उनका जीवन बदल रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस है। इस अवसर पर आकाशवाणी ने एक विशेष बातचीत का आयोजन किया है। स्वागत करना चाहूंगा मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की उप महानिदेशक ऋचा शंकर। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद कमल जी।
सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर जो मंत्रालय और विभाग की ओर से एक खास कार्यक्रम का हर वर्ष आयोजन होता है जिसमें माननीय राष्ट्रपति ऐसे दिव्यांगजनों को सम्मानित करती हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों के लिए कुछ काम किया है या खुद भी वे दिव्यांग हैं, उन्होंने न सिर्फ अपनी प्रतिभा से बल्कि अपने सामाजिक योगदान से कुछ दिया है तो उनको ये पुरस्कार हर वर्ष दिए जाते हैं। इसी से शुरू करते हैं मैम कि इन पुरस्कारों का क्या महत्व है और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस का क्या महत्व है।
3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस के अवसर पर कई वर्षों से माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। ये पुरस्कार जैसे आपने बताया उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में या तो स्वयं दिव्यांग होते हुए अनमोल कार्य किया है, अमूल्य कार्य किया है, या अन्य लोगों ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए व्यक्तिगत तौर पे या संस्था के रूप में कुछ ऐसा काम किया हो जिनसे दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार आ सके, निखार आ सके।
आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि किस तरह से दिव्यांगजनों को सम्मान दिया जाता है इस दिन। और अब हम बात करना चाहेंगे कि सरकार की जो विशेष पहल रही है या कुछ कदम रहे हैं जिनकी वजह से दिव्यांगजन समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिभा सामने रख रहे हैं, तो इसमें एक सबसे बड़ी पहल आती है सुगम्य भारत अभियान। आप किस तरह से हमारे श्रोताओं को जानकारी देना चाहेंगी कि सुगम्य भारत अभियान ने कैसे पूरे देश में दिव्यांगजनों को लेकर एक पूरा इकोसिस्टम बदला है, कैसे उनके लिए सुविधाएं बढ़ी हैं और कैसे ये अभियान सफल रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने सन 2015 में 3 दिसंबर जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस था तब से सुगम्य भारत अभियान की पहल करवाई और इस पहल के तहत हमने देखा कि जहां जहां जो जो जगह सुगम नहीं थी दिव्यांगजनों के चलने के या जाने के मकसद से उन स्थानों को हमने सुगम बनवाया और इसी कड़ी में बाद में हमने न केवल जो परिवहन था उसको सुगम किया, उसी के साथ साथ जो हमारी वेबसाइट्स हैं, जो हमारे डिफरेंट पोर्टल्स हैं, उनको भी सुगम्य बनवाया तो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी भी हमने उससे इंश्योर कराई। तो ये सारे दिव्यांगजनों को सुगमता देने के लिए कि कैसे उनके जो भी बाधाएं हैं उनको कम से कम करके एक बाधा रहित वातावरण बनाया जाए उसके रूप में हमने पिछले 10 सालों में काफी गतिविधियां करी हैं और काफी अच्छी सफलता हम लोगों को मिली है।
निश्चित तौर पर ये बहुत सफल अभियान रहा है। हम देखते भी हैं कि जो सार्वजनिक स्थानों पर चाहे रैंप्स हो, लिफ्ट्स हो या डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की आपने बात की, वेबसाइटों को सुगम बनाना हो, उसमें बहुत काम हुआ है जिसके परिणाम हम देख भी रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पहल रही है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी की, ये एक ऐसा प्रमाण पत्र रहा है जिसने दिव्यांगजनों के लिए जो सुविधाएं उन तक पहुंचती हैं, चाहे आर्थिक सुविधाएं हो उनके लिए और तमाम तरह की सुविधाएं हो, वो उन तक डायरेक्ट पहुंचे, इस डिसेबिलिटी से उनको एक विशेष पहचान मिले। तो इस कार्ड के बारे में बताएं कि ये जो कॉन्सेप्ट था सरकार का यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट रहा है और इसके क्या हमें नतीजे देखने को मिले हैं?
जैसा कि हर भारतीय नागरिक के पास एक आधार कार्ड है, उसी तरह का एक प्रस्ताव रहा कि हर दिव्यांग के पास में भी एक इसी तरह का एक पहचान पत्र हो, जिससे कि उनको जब भी कोई सरकारी सुविधा या अपने आप के बारे में किसी को बताना हो कि भाई उनको किसी तरह की दिव्यांगता है, तो वो किस तरह से बता पाए। इस तरह का एक, इस विभाग ने एक पहल की थी और एक यूडीआईडी कार्ड का निर्माण कराया गया और अब तक देश में 1.25 करोड़ से भी ज्यादा यूडीआईडी कार्ड बन चुके हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या अभी और बढ़ेगी, क्योंकि जितने दिव्यांगजन हैं उनको धीरे धीरे इस चीज की आवश्यकता पड़ती है, तब लोग बनवा रहे हैं अपना कार्ड।
एक और बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है जिसके मामले में सरकार ने बहुत काम किया है, दिव्यांगजनों की स्किल्स को लेकर, कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकें, अपनी स्किल्स से रोजगार कर सकें। इसके बारे में भी थोड़ा हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि जो दिव्यांगजनों के अंदर कौशल है, गांव-गांव में बहुत से दिव्यांगजन होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है या कहीं भी, तो उनके हुनर को सामने लाने के लिए विभाग ने जो काम किए हैं, उसके जो नतीजे देखने को मिले हैं, वो कैसे बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं?
जैसा आपने खुद ही कहा, तो दिव्यांगजन हमारे किसी कौशल से रिक्त नहीं है। उनमें हमें ये पाया है कि बहुत अलग अलग तरह का कौशल होता है और केवल उसको एक सही मंच देने की आवश्यकता होती है। तो इस सोच के साथ में इस विभाग ने एक स्किलिंग की स्कीम, कौशल विकास की स्कीम चलाई थी और जिसके तहत लगभग 1.5 लाख दिव्यांगजनों को स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है, अलग अलग फील्ड में स्किल ट्रेनिंग दी गई है। और ये कार्य हमारे बहुत सारे एनजीओस के माध्यम से हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय संस्थान जो हैं, 9 राष्ट्रीय संस्थान हैं और हमारे जो रीजनल सेंटर्स हैं, वो सब मिल करके दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज चला रहे हैं और उनसे अलग अलग सेक्टर्स में दिव्यांगजन अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में आ जाते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं। तो इस विचार के साथ में ये स्कीम चल रही है और निश्चित ही बहुत कुछ अभी और करना बाकी है, तो धीरे धीरे हम लोग उसमें और भी नए नए परिवर्तन कर रहे हैं।
कौशल के बाद आती है बारी शिक्षा की। हमने ये देखा है कि सरकार ने इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर बहुत काम किया है, जिसे हिंदी में हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, जिसमें हमने कई उदाहरण भी देखे कि अब हर दिव्यांगजन के लिए शिक्षा में चीजें उपलब्ध हैं, किसी भी सामान्य स्कूल में जाकर एक दिव्यांगजन पढ़ सकता है, ऐसी सुविधाएं बनाई गई हैं। और नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य भी है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसको लेकर भी सरकार ने बहुत काम किया है। अब हम साइन लैंग्वेज में भी कई तरह के पहल को देख सकते हैं, जिससे विद्यार्थियों के लिए हर प्लेटफॉर्म पर साइन लैंग्वेज में चीजें अवेलेबल हैं। तो ये सब नतीजे हमें देखने को मिले हैं। आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का एक माहौल बना है, जिससे कि भारत में एक बहुत अच्छा एक शिक्षा का तंत्र जो हमारे दिव्यांगजन है उनके लिए बन रहा है।
हर व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता है और उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कुछ शिक्षण संस्थान की जरूरत होती है, तो उस कमी को महसूस करते हुए कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए थे जहां पे दिव्यांगजन अपनी पढ़ाई कर सके। पर फिर ये भी देखा गया कि समावेशी शिक्षा ज्यादा कारगर होगी, तो उसके लिए फिर सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों को समावेशी शिक्षण के लिए तैयार किया और आज हमारे दिव्यांगजन बहुत सारे अलग अलग संस्थानों में पढ़ रहे हैं और उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं और उसके पश्चात वो और भी आगे की पढ़ाई करके और अच्छे से अच्छे रोजगारों में जा चुके हैं।
हमने एक बहुत बड़ी सरकार की पहल देखी है कि जो दिव्यांगजनों के लिए जरूरी उपकरण है, जो उनके जीवन को आसान बनाते हैं, चाहे चलने के लिए हो, उनके पढ़ने लिखने के लिए हो, या उनको किसी भी तरह से सहायता देने के लिए जो एड्स एंड अप्लायंसेज होते हैं, उपकरण होते हैं, उनका भी सरकार ने बड़ी मात्रा में दिव्यांगजनों तक, गांव-गांव तक जाकर कैंप लगाकर डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ये योजना कितनी सफल रही है और कैसे इसमें काम हो रहा है और किस किस तरह के उपकरण दिव्यांगजनों को दिए जाते हैं जो उनके जीवन को आसान बना रहे हैं, इसमें विभाग की क्या भूमिका है?
विभाग की एक बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है वो एडेप योजना है, जो आपने बताया,
बिल्कुल,
जिसके तहत असिस्टिव डिवाइस दी जाती है दिव्यांगजनों को, जिससे जो उनके जीवन में जो बाधा है उस बाधा को कम किया जा सके, उनके जीवन को सुगम बनाया जा सके और उसमें हमारे अलिम्को के द्वारा बनाए गए अलग अलग यंत्र जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और उसके बाद में उनका कैंप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और छोटी छोटी जगह पे भी लोगों को इंतजार रहता था पहले कि कैंप लगे तो उनको चीजें मिलेंगी।
ये आर्टिफिशियल लेग्स की आप बात कर रहे हैं?
आर्टिफिशियल लेग्स भी है और जो व्हील चेयर होती है, जो विशिष्ट तरह की छड़ी होती है, स्मार्ट केन होती है और सभी तरह की चीजें हैं। तो पहले कैंप के थ्रू होता ही था, अब हमने 100 पीएमडीके केंद्र, पीएम दिव्याशा केंद्र बनाए हैं जहां पे कोई भी भारत का नागरिक यदि वो किसी तरह की दिव्यांगता से ग्रसित है तो वो जाकर के अपने लिए जो भी सही चीज है उसको वहां जाकर के वो सेंटर से तुरंत ले सकता है। हमारे सेंटर पे कुछ चीजें सुलभता से मौजूद रहती हैं। तो इस तरह से एडिप के माध्यम से हम बहुत सारे दिव्यांग लोगों को उनकी जो कठिनाइयां हैं उनसे थोड़ा सा बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं।
2016 में हमने देखा कि दिव्यांगजनों के लिए भारत में एक ऐसा कानून आया जिसने उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। हालांकि 1995 का भी एक अधिनियम था लेकिन 2016 के नियम ने बहुत सारी चीजों को बदला, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो या फिर जो उनकी डिसेबिलिटी होती है, दिव्यांगता होती है, उनकी श्रेणियों को बढ़ाया गया। इस बारे में भी हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि ये अधिनियम कितना बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो या और दिव्यांगजनों की पहचान हो उनको समाज में रखने के लिहाज से।
तो RPWD एक्ट 2016 के माध्यम से, जो उससे पहले हमारे पास मात्र 7 तरह की दिव्यांगताएं हम जिनको मान्य मानते थे वो बढ़ करके 21 हो गई। दूसरा एक उसमें ये हुआ कि हमने जो रिजर्वेशन था, जो दिव्यांग लोगों को नौकरी में एक रिजर्वेशन देते थे वो पहले 3% था, उसको बढ़ा करके 4% कर दिया गया। और जो उच्च शिक्षा के लिए जो हमारा आरक्षण था वो 5% तक बढ़ा दिया गया। तो अभी हम इस माध्यम से अधिक दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा की तरफ प्रोत्साहित कर पाते हैं और साथ ही साथ उनका थोड़ा जो नौकरियों में प्रवेश को सुनिश्चित कर पाते हैं। और RPWD एक्ट ने बाकी और भी बहुत सारी चीजें, जैसे किस तरह से केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दिव्यांगों के मूल फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर कराने का प्रावधान किया है, वो निश्चित ही आगे जाके बहुत सार्थक हुआ है।
हम देखते हैं कि दिव्यांगजनों के जीवन को और ज्यादा आसान बनाने के लिए सरकार ने उनके लिए ऋण की या लोन की जो फैसिलिटीज हैं उनको भी दिया है, जिससे बहुत सारे जो दिव्यांगजन हैं न सिर्फ अपने लिए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े हैं बल्कि और भी तमाम जो उनकी जरूरतें हैं उससे उनकी पूरी हुई हैं। तो विभाग की कौन सी वो योजना है जिससे कि दिव्यांगजन लोन अवेल कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं और अपने जीवन में जो भी वो कुछ करना चाहें, जो भी अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहें उन्हें पूरा कर सकते हैं?
इस विभाग का एक PSU है, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा के लिए, घर के लिए तथा उद्यमता के लिए रियायती दरों पर लोन प्राप्त होता है और काफी अच्छा समय के लिए वो उनको जो वापसी का समय है वो काफी है। तो दिव्यांगजन इससे भी लाभ उठा रहे हैं और स्वरोजगार के लिए उनके लिए बहुत अच्छे आयाम इसके साथ खुल पा रहे हैं।
आखिर में हमारे सुनने वालों को आप कोई संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहें जो कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है उसके मौके पर, कि वो कैसे जागरूकता ला सकते हैं, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टिकोण चेंज कर सकते हैं दिव्यांगजनों को लेकर, या कोई दिव्यांगजन भी अगर हमें सुन रहा हो तो उसके लिए भी कोई मैसेज?
जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है आपने। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंसस 2011 के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी दिव्यांग जनता रही है, तो हम सबने आसपास कहीं ना कहीं दिव्यांगजन देखे हुए हैं। मैं इस माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सभी से ये आह्वान करना चाहती हूँ कि ये दिव्यांगजन हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, इनको आप उनकी विषमता से ना देखें, आप उनकी क्षमता समझें, उनकी प्रतिभा को समझें, उनका योगदान देखें और उनकी विविधता को मानते हुए उनको मान सम्मान दे करके उनको अच्छा एक परिवेश दे जिसमें कि वो अपने आप को इस समाज का एक अंग माने और उनको इस तरह का एक संदेश जाए कि वो अलग नहीं है, वो हमारा भाग है। इसी क्रम में ही हम अपने जो राष्ट्रीय पुरस्कार देते हैं वहाँ पे भी हम इनकी क्षमताओं को पहचानते हैं, वही हम चाहेंगे कि समाज भी उनको एक हाथ बढ़ाए और उनको अंगीकृत करे।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कार्यक्रम में आप जुड़ी और बहुत विस्तार से आपने बहुत आसान शब्दों में हमारे सुनने वालों के लिए दिव्यांगजनों को लेकर जो योजनाएं चल रही हैं, जो पहल की जा रही हैं मंत्रालय की ओर से, उसके बारे में बताया। बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद जी।
हमें हक है, हमें हक है, हक है बराबरी का।
अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर विशेष कार्यक्रम। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन सकते हैं।